समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, ले आए हम आपके लिए वो तमाम जानकारियां जिनका है आपसे सरोकार और जिनका आप करते हैं रोजाना इंतजार। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और करेंगे हम याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुनीश। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा, एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट मुनीश शर्मा। एंड यस, एज मुनीश टोल्ड अस ऑल दैट फर्स्ट विल गिव यू द हेडलाइंस एंड आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर इट, कीप लिसनिंग टू अस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। वी ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग वंस, एंड बिजनेस अपडेट्स एंड आवर ट्रिब्यूट्स। And all of this will happen over the next 30 minutes. So make sure, listeners, that you stick around with us till the very end. First, we are beginning with the headlines.
जी हाँ, मुख्य समाचार। सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार हुई बाधित, लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित।
Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says opposition digging out issues to disrupt Parliament.
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2208 मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में मांगा है स्पष्टीकरण।
Fourth edition of Kashi Tamil Sangamam to begin with grand ceremony in Varanasi this evening.
और चक्रवाती तूफान दित्वा का गहरा दबाव क्षेत्र पड़ा कमजोर, चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी।
एंड नाउ दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट आवर टॉपिक, द फोर्थ एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम, एंड द सेकेंड वन वी विल लेट यू नो अबाउट इट।
जी हाँ, जैसे ही सूर्य की पहली किरणों ने काशी के घाटों को छुआ, शहर में जैसे कुछ खास हलचल सी हो गई। चौथा काशी तमिल संगम शुरू हुआ। मानो सदियों बाद दो प्राचीन सांस्कृतिक भाई बहन गले मिल रहे हों। व्हाट्सएप या ईमेल से बहुत पहले विद्वान, संत, कवि और व्यापारी तमिल क्षेत्रों और काशी के बीच लगातार यात्राएं करते थे, विचारों, धर्म ग्रंथों, औषधियों और यहां तक कि खाने की परंपराओं का भी होता था आदान प्रदान।
यस मुनीश, एंड एट द इनॉग्रल सेरेमनी, वेल, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट फ्रॉम काशी एंड तमिलनाडु विल शेयर द सेम स्टेज, सो इट्स लाइक अ क्लासिकल मृदंगम ब्लेंडिंग विद द सोलफुल नोट्स ऑफ अ काशी फ्लूट।
जी हाँ शगुन, ये कुछ ऐसा ही था जैसे आपके पसंदीदा दो व्यंजन जो हैं वो एक ही प्लेट में हो और साथ मिलकर कुछ और भी बेहतर बना दें उसे।
What a reference! And more than 1400 delegates from Tamil Nadu, they have arrived. Students, they include students, teachers, writers, media folks, farmers, artisans and spiritual scholars as well. So it's like a full train of talent arriving with stories, with songs and a lot of wisdom to share. And the heart behind this entire celebration and initiative, this is an initiative envisioned by Prime Minister Narendra Modi, a beautiful effort to celebrate the timeless bond between Tamil Nadu and Kashi, well, two of India's oldest centers of culture, knowledge and spirituality.
This celebration vastav mein Bharat ki vivitaon aur visheshtaon ka celebration hai, aur isliye काशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है।
तो आइए दोस्तों, आज की इस बातचीत में परंपरा को करें शामिल, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आकांक्षाओं के साथ चलने दें।
So if we speak about the ancient bones, you simply can't talk about Tamil heritage without mentioning what? The Sangam literature, one of world's oldest and richest bodies of poetry. These works speak of love, courage, nature, dignity and everyday life all blended into one with such simplicity that even after 2000 years, the words feel fresh.
और इसीलिए आज जब काशी तमिलनाडु का खुले दिल से स्वागत कर रही है, ये एक सशक्त संदेश है, भारत की एकता का संदेश कि हम हमेशा से कितने गहरे रूप से आपस में जुड़े रहे हैं। काशी तमिल संगमम सचमुच एक खूबसूरत पुल की तरह है जो दो प्राचीन लेकिन सदैव युवा दुनियाओं को आपस में जोड़ता है, तमिलनाडु और काशी।
And this bridge isn't just made of stones or steel. It is made of stories, music, knowledge and memories that India has cherished for thousands of years. And Munish, you know how in a family, even if siblings, the family members, they live in different cities, the bond, it still remains strong. And that's exactly what this Sangamam celebrates, the oneness of Indian civilization, well, no matter how far apart we may be geographically.
बिल्कुल शगुन, सच कहा आपने, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है हमें। और आइए अब जरा अपने श्रोताओं को ले चलते हैं 2022 में वापस।
जी
हाँ, जब इसका पहला संस्करण 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया गया था आयोजित, तमिलनाडु से 2500 से ज्यादा लोग, शिक्षक, छात्र, कारीगर, किसान, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के 8 दिवस के दौरे के लिए अपना अपना सामान लेकर चले आए थे। उन्होंने साथ में खाना खाया, नई चीजें सीखी और जीवन भर की यादों को आपस में संजो लिया।
And they also explored Varanasi in a way that textbooks they can never show. You know, when you're there, you're presently experiencing it. No textbook can do the justice, maybe. And walking through the ancient lanes, listening to Ganga's soothing rhythm, soaking in the vibrant culture of Kashi and unfolding the spiritual depth of places they'd only have heard about. And this first edition took place at BHU, right in the cultural heart of the city.
और दोस्तों 2022 ही क्यों, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव का साल जो था, जब पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए अपनी जड़ों को फिर से खोज रहा था। संगमम हमारी सभ्यतागत निरंतरता का एक आदर्श अनुस्मारक बनकर उभरा है कि कैसे परंपराएं, विचार और सांस्कृतिक संबंध टूटते नहीं, वो तो बस बहते रहते हैं जैसे स्वयं गंगा।
Well said, and now let's fast forward to December 2023, the second edition. So this time the venue was the stunning Namo Ghat, where the event was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. And here's something really unique that happened. For the first time ever, an app provided real-time translation of the PM's speech into Tamil.
बिल्कुल, और शगुन जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने श्रोताओं के बीच बैठी हुई हैं और किसी नेता को अपने दिल की प्यारी भाषा में बोलते हुए सुने तो आपको ऐसा लगेगा जैसे तकनीक संस्कृति को एक गर्म जोशी से भरा आलिंगन दे रही है। परंपरा और आधुनिक उपकरणों का पुल असल में ऐसा ही होता है। तो सुनिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने बताया कि काशी तमिल संगमम 4.0 के पहले चरण में तमिलनाडु से छात्रों और शिक्षकों का 7 दल वाराणसी आएगा। इस दल में शामिल शिक्षक वाराणसी के स्कूलों में बच्चों को तमिल भाषा एवं संस्कृति का परिचय देंगे और उन्हें तमिल भाषा सिखाएंगे। इस संगम में आने वाली पीढ़ियां न केवल तमिल भाषा जानेंगे बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और भारत के साझा सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का अनुभव करेंगे। दूसरे चरण में लगभग 300 छात्र बनारस से तमिलनाडु भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम का मुख्य उद्देश्य भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करना है। इस पहल का विषय है तमिल सीखें, तमिल कर कलम, जिसके माध्यम से तमिल भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर भारत तक ले जाना है। तमिलनाडु और काशी की प्राचीन सभ्यता, लोक कलाएं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, साझा चिंतन और संवाद की संस्कृति, ये सब मिलकर भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
एंड बाय फरवरी 2025 द संगमम हैड ग्रोन इनटू अ ट्रेडिशन ऑफ इट्स ओन। द थर्ड एडिशन हेल्ड फ्रॉम 15th टू 24th शोन अ स्पॉटलाइट ऑन द लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्यार।
वडक्कम काशी, मैं अर्पिता अग्रहरी एक कथक डांसर। बेसिकली हमारे काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो कि बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हैं, इन दोनों को एक रूप देना और उन दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाना है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के बात को भी आगे बढ़ाते हुए यही कहती हूँ कि हम सबको बिल्कुल मिलजुल करके एक साथ एक समरूपता के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।
एंड एक्चुअली इट्स अ रिमाइंडर दैट इवन दो इंडिया स्पीक्स इन हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, इट्स हार्ट बीट्स इन वन रिदम। एंड दिस ईयर द काशी तमिल संगमम 4.0 कम्स विद अ ब्यूटिफुल एंड हार्ट टचिंग थीम विच इज लेट अस लर्न तमिल, तमिल कर कलम।
जी हाँ, जब आपके परिवार में कोई दूसरे रिश्तेदार की मातृभाषा को सीखना शुरू करता है तो आप देखते हैं कि कैसे रिश्ता फौरन गहरा और गहरा हो जाता है। और इस विषय का सार यही है, ये एक सरल लेकिन गहरा संदेश देता है कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी भाषाएं हैं।
एंड दे ऑल बिलोंग टू वन बिग भारतीय भाषा फैमिली, एज वी कैन से, जस्ट लाइक कजिन्स हु ग्रू अप इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स बट दे शेयर द सेम रूट्स। And well, this initiative isn't just symbolic. It is symbolic. Isn't just symbolic. It aims to take Tamil, one of world's oldest and richest classical languages, to every corner of the country. So learning Tamil opens a doorway to a universe of ancient wisdom, knowledge preserved for thousands of years in classic Tamil texts, which we'll know about, and Sangam poetry, Siddha medical treatises, and temple inscriptions, and timeless stories.
साथियों, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः शिवाय। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः शिवाय।
दोस्तों, एक मार्मिक स्मरण है कि ज्ञान और संस्कृति हमेशा से भारत में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते रहे हैं, राज्यों की अवधारणा के अस्तित्व में आने से भी बहुत पहले। एकता का एक और सुंदर प्रतीक काशी तमिल संगम एक्सप्रेस 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ये ट्रेन पहियों पर जैसे एक उत्सव है। ये तमिलनाडु और काशी को अत्यंत शाब्दिक और काव्यात्मक तरीके से आपस में जोड़ देती है।
And when we celebrate each other's culture, we celebrate our unity. And in the words of ancient Sangam poets, the world is one home and all people are our family. And that's the spirit of that we are celebrating here, a celebration of language, legacy, knowledge and the eternal oneness of India.
दोस्तों, हर साल 2 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। ये दिन एक बेहद गंभीर दिन की याद दिलाता है, 1984 की दुखद भोपाल गैस त्रासदी, शहर की वो शांत रात जो एक बुरे सपने में बदल गई थी, जब यूनियन कार्बाइड के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक घनी आबादी वाले इलाके में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हो गया था.
Well, thousands of innocent lives were lost and at least 4,000 people and families were torn apart in an instant. Bhopal became tragically a gas chamber. National Pollution Control Day, which we are talking about, isn't just about remembering the lives lost. It's also about learning from the disaster and making sure such tragedies, they never happen again. It reminds us that industrial carelessness can have devastating consequences and that pollution control, it's not optional. It is a responsibility. Of course, and if we emphasize on this point, Manish, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, well, this law, if we talk about that, let's elaborate on that. This law is designed to monitor and control air pollution. It sets limits for emissions and keeps industries in check, helping us breathe cleaner air. Also, if I talk about National Green Tribunal 2010, the NGT, it's like a fast-track court for environmental cases. It hears complaints about pollution, forest destruction or violations of environmental law and ensures quick action is taken up. And if now we are moving forward with this, well, tomorrow it is International Day of Persons with Disabilities. As part of our podcast series, Person Behind the Story, we will broadcast a conversation with Chonsin Akmo, the first visually impaired woman in the world to climb Mount Everest. How wonderful. To listen to the entire podcast, listeners, tune into Akashwani FM Gold tomorrow at 9:10 in the morning. And it can also be heard tomorrow at 5:30 p.m. in the evening. Let's find out from our correspondents what's happening. First, we'll take you to Cuttack, listeners. The much-awaited 36th Konark Festival and 15th International Sand Art Festival have kicked off near the world-renowned Sun Temple at Konark in Puri district of Odisha. So the Konark Festival showcases the best of the traditional and classical dance forms of India, besides offering interesting insights into the rich cultural and dance heritage of the country. We have more on this from our correspondent.
The 5-day annual Konark Festival of Classical Dance, featuring performances by some of the country's most celebrated dancers in the magnificent open-air auditorium with the iconic Sun Temple as its backdrop, is enthralling the visitors. The festival will continue till 5th of December. The events will feature renowned dancers showcasing classical dance performances, including Odissi, Kathakali, Kuchipudi, Bharatnatyam and Kathak at the Konark open-air auditorium. The 15th edition of International Sand Art Festival has also begun simultaneously at the Golden Sands of Chandrabhaga Beach at Konark. Artists from India and abroad are participating in the International Sand Art Festival. Sand artists from countries like Japan, Russia, Spain and Sri Lanka are participating in the festival. For the first time, Subhadra Shakti Mela is also being organized at the venue, featuring 200 stalls. Women from Mission Shakti groups and artisans from across Odisha are showcasing a wide variety of handicrafts and traditional products. Like every year, lakhs of tourists are expected to visit during the 5-day extravaganza. For Parikrama, this is Nirmalya Behra, Akashvani Cuttack.
Now, the government is taking several measures to ensure food safety without compromising on its quality. In this regard, proposals for setting up food testing labs as well as irradiation units across the country have been invited by the government. The Ministry of Food Processing Industries is providing financial assistance to industry stakeholders keen on setting up food testing labs. Talking exclusively to Akashwani News, Joint Secretary at the Ministry of Food Processing Industries, Ranjit Singh, said that a financial outlay of 500 crore rupees has been set up by the government to provide financial assistance.
और दोस्तों अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल.
And Munish, in that, in women's hockey, the Indian junior team began its campaign in the FIH Junior Women's World Cup with a 13-0 win against Namibia in Santiago, Chile. So with this win, India climbed to the top of the table. And now in some business news, Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended more than 0.5% down today, extending losses for a third straight session. The markets opened on a negative note and remained under pressure throughout the session.
और शगुन, आइए अब हम याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1996 को हुई थी। 1940 के दशक के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य में उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। वे उन दिग्गजों में भी थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था।
रेड्डी का जन्म 13 जनवरी 1919 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में हुआ था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातक के बाद वे चिकित्सा सेवा में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी इच्छा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की थी, इसलिए उन्होंने एक सफल चिकित्सक का पेशा छोड़ दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।
1942 में उन्हें आंध्र महासभा का महासचिव चुना गया।
रेड्डी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तत्कालीन लोकप्रिय तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष भी रहे।
वे जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
हम मुंगी वीरैया और उनके साथियों को भी याद करते हैं जो हैदराबाद की निजाम की सेना से लड़ते हुए 2 दिसंबर 1946 को शहीद हो गए थे। निजाम के सैनिकों ने किसान विद्रोहियों की तलाश में तेलंगाना के नलगोंडा के मल्ला रेड्डी गुडेम गांव पर छापा मारा था। मुंगी वीरैया 600 से अधिक ग्रामीणों के साथ इसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी जिसमें वीरैया और कई अन्य किसानों की भी मृत्यु हो गई। हम इन सभी शहीदों को सलाम करते हैं।
आज हम सबसे शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक नारायण गणेश चंद्रावरकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1855 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होनावर में हुआ था।
1881 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चंद्रावरकर इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1885 में लंदन गए।
बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में जुट गए और 1900 में इसके वार्षिक सत्र के अध्यक्ष चुने गए। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व उन्होंने संभाला और सामाजिक कार्यों में लग गए।
और 1918 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दिनशो वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन का नेतृत्व किया।
1920 में उन्होंने जलियांवाला बाग अत्याचारों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में बॉम्बे में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। चंद्रावरकर की सलाह पर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था।
दोस्तों, आज पुण्यतिथि है अभिनेता देवेन वर्मा की, जिनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1937 को और इस दुनिया को उन्होंने कह दिया अलविदा आज ही की तारीख को, यानी 2 दिसंबर को 2014 पुणे महाराष्ट्र में। वो भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता के तौर पर जाने गए। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने शानदार हास्य अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। देवेन वर्मा ने लगभग 149 फिल्मों में काम किया। गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, ये उनके करियर की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक रहीं। और बेशर्म समेत कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने किया था। चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस दौर में हिंदी फिल्मों के कॉमेडियन का मतलब होता था कि तरह तरह की भाव भंगिमाएं बनाकर एक किस्म की जिसे कहते हैं शगुन स्लैपस्टिक कॉमेडी उसका बोलबाला था, उस समय उन्होंने एक ऐसा कॉमेडी का जो है स्वरूप हमारे लिए प्रस्तुत किया जो दिल को गुदगुदाता भी था लेकिन कुछ सोचने को भी मजबूर करता था।
Well, yes, meaningful comedy.
Yeah, indeed.
And actor Deven Verma, yes, the star, I would like to add here that who twinkled for decades in the firmament of Bollywood funny men. So he began his screen career in the early 60s with roles in so many films. Well, you also named so many films, Aaj, Aur Kal, Anupama, and so many others.
Yes, but I can't help but recall one of his very well-known films called Angoor, which was actually based on a Shakespeare drama called Comedy of Errors. To kyun na usi ka ek geet kaansh suna jaye?
Ji.
Pritam aan milo, pritam aan milo, ho dukhiya jeevan कैसे बिताऊं प्रीतम आन मिलो रात अकेले डर लगता है जंगल जैसा घर लगता है
और दोस्तों आज ही है पुण्यतिथि अभिनेत्री प्रीति गांगुली की जिनका जन्म हुआ था 17 मई 1953 को मुंबई में और इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया उन्होंने 2 दिसंबर 2012 को मुंबई में। हिंदी सिनेमा में उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कई कॉमिक भूमिकाएं उन्होंने निभाई और उनकी मुख्य फिल्मों की बात करें तो तुम हो ना हो, आशिक बनाया आपने, खट्टा मीठा, तृष्णा, दिल लगी, आहूति, अनुरोध, बालिका वधु, रानी और लाल परी आदि कुछ खास फिल्में याद आती हैं। 1993 में अपने पिता अशोक कुमार की अकादमी ऑफ नाट्य कला के नाम से उन्होंने एक अभिनय स्कूल की भी शुरुआत की।
Well, today it's also actor Boman Irani's birthday. So here's wishing the extraordinary actor, filmmaker and storyteller a wonderful birthday and even grander year ahead. So he has always been one of Hindi cinema's most versatile and magnetic performers. So, and one of the films, Munna Bhai MBBS.
Yes, who can forget?
Great performance. So let's hear it from Mr. J. Asthana himself.
Good morning, everybody. Welcome to the Imperial Institute of Medical Studies, and I am J. Asthana, the Dean of this college. मैं आज आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बेहतरीन डॉक्टर्स इसी हॉल में इन्हीं बेंचेस पे कभी बैठा करते थे।
और शगुन तुम्हें याद हो तो एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने बड़ी यादगार भूमिका की और श्रोताओं को लगाने देते हैं अंदाजा और सुनते हैं उसका भी ये संवाद।
Showed me this pen. He said, this is a symbol of excellence. I give it to you. और जिस दिन तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट मिले तो ये पेन उसे पास ऑन कर देना। 32 साल से वीरु सहस्त्रबुद्धे is waiting for the next वीरु सहस्त्रबुद्धे। क्या इस बैच में कोई है जो ये पेन ले जाएगा?
Yes, from comedic brilliance to intense drama, well, Boman Irani has transformed supporting roles into unforgettable performances. And today, well, we are also remembering Bhumi Reddy, Nagi Reddy, the veteran filmmaker from the South, was born in Kadapa in Andhra Pradesh on 2nd December. Today it's his birth anniversary.
Ji haan, to sunte hain unki ek bahut hi yaadgar film ka ye geet, jo aap sunenge to ek zamana yaad aayega aap sabko.
Dil kya kare jab kisi se किसी को प्यार हो जाए जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार।
दोस्तों वक्त हो गया आपसे अनुमति लेने का, इजाजत दीजिए मुनीश शर्मा और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट और साथ ही हमारे मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार भेजते रहिए।